तो आप लोग ने ना वो कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो पहले रशिया का और काफ़ी जो सारे देश हुआ करते थे, उनके बीच में जो वॉर चला था। एक्चुअल वॉर तो नहीं हुआ था, बट एक पॉसिबिलिटी हमेशा से थी वॉर की, तो इसलिए इसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, राइट। ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के कुछ ही टाइम बाद, और ख़त्म हुआ था कुछ 1991-1992 के आसपास, जब सोवियत यूनियन जो है कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गया और उसमें से रशिया बना और काफ़ी अलग अलग जो छोटे छोटे और भी कंट्रीज बन गए। पर इस वॉर की ना एक खासियत ये थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए थे, और ये एडवांसमेंट्स फॉर दी सेक ऑफ मिलिट्री या फॉर दी सेक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुए थे। ये एडवांसमेंट्स इसलिए हुए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा था दोनों कंट्रीज के बीच में कि किसके पास अपर हैंड है, कि कल को अगर वॉर हो जाए तो हमारे पास अपर हैंड होना चाहिए। काफ़ी ऐसे ऐसे वेपन्स डेवलप हुए, काफ़ी ऐसे बने। पहले एक मान लीजिए रशिया कुछ बनाता था तो कहीं से अमेरिकन्स को पता लगता था तो वो कॉपी करके उससे अच्छा बना लेते थे, और ऐसे वाइस वर्सा चलता रहता था। और उसी टाइम पे अगर आपको याद हो तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स उसी टाइम पे हुए थे। तो जैसे आप देख लीजिए वहाँ पे द फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून वॉज नॉट ऑन द मून टू स्पेस वॉज फ्रॉम रशिया। फिर अमेरिकन ने अपना एफर्ट और भी बढ़ाया और फाइनली मैन लैंडेड ऑन मून एज वेल। तो इसमें जो काफ़ी डेवलपमेंट्स और जो काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रहे थे, इसमें एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी रिसर्च भी हुई जो इंडियन योगीज के साथ इन्वॉल्व थी। तो खैर क्या थी ये रिसर्च और क्या हुआ कैसे हुआ ये मैं आपको इस कहानी में बताऊँगा, तो चलिए चलते हैं। तो इसके पहले मैं आपसे कहानी स्टार्ट करूं, मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। तो ये इंडियन योगीज ये वही हैं साधु जिनके बारे में मैंने आपने देखा भी होगा कुंभ के मेले में अक्सर हिमालय से नीचे आते हैं, और कंट्रीज़ के ऐसे भी सिर्फ हिमालय में नहीं पूरे कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो इनके बारे में ना एक बात बोली जाती है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा कुछ पावर्स होती हैं जिसे सिद्धियाँ भी कहते हैं। किसी के पास पावर है पास्ट को देखने की, किसी के पास पावर है फ्यूचर को देखने की, किसी के पास आयुर्वेदा की सिद्धि है कि वो देख के आदमी को हील कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और इसी में ना एक कॉन्सेप्ट आता है कुछ एक समाधि का, जिसको इंग्लिश में ये लोग अक्सर एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये लोग कहते हैं कि ये लोग एक तरीके से मेडिटेशन में चले जाते हैं, और इनकी जो अपनी आत्मा होती है ये अपनी फिजिकल बॉडी से निकल जाती है, और फिर ये कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, मैंने दुनिया के किसी भी कोने में एट दी ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ये भी एक तरीके से एक योगिक शक्ति मानी जाती है, एक योगिक पावर मानी जाती है। और कई योगिक शक्तियों में से एक और है जिसे टेलीपैथी कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसका क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने कुछ सोचा कि अरे मुझे तो अपनी दोस्त की याद आ रही है, उससे मुझे फ़ोन करना चाहिए, और अचानक से आप देखेंगे कि उसी का फ़ोन बच जाता है, और दूसरी तरफ से जब बात करिएगा आप बोलेगा कि अरे मेरे को तो तुम्हारी याद ही आ रही थी, तो उसने बोला हाँ यार मुझे भी अचानक से लग रहा था कि मुझे तुझसे बात करनी चाहिए। तो हम लोग कहते नहीं है कि बिना बात किए ही बात एक दूसरे को पहुंच गई, तो उसको टेलीपैथी इंग्लिश में। तो कहते हैं कि कई योगियों के पास ये वाली शक्ति भी होती है कि इधर से उधर बात कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल वर्ड्स निकाले, या कोई डिस्टेंस का भी इनका कोई मायने नहीं रखता, कोई यूएस में बैठा होगा कोई इंडिया में बैठा होगा लेकिन बात कर लेते हैं। तो इन सबको सिद्धियाँ कहा जाता है। तो बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग तब होती है जब सोवियत्स ने, अब कब आए कैसे मिले ये किसी को नहीं पता, बट जो सोवियत यूनियन वाले जो थे, पर्टिकुलरली जो केजीबी से थे, जो इनकी इंटेलिजेंस की यूनिट थी, वो लोग हिमालयस पे आए और इंडियन योगी से मिले, और शायद किसी का कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, किसी ने रियलाइज़ किया होगा कि हाँ ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, और इस पे इन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वॉरफेयर में। जैसा मैंने आपको बोला, जितनी भी एडवांसमेंट हुई थी, जितनी भी रिसर्च हुई थी, मेनली वॉज टू फाइट द अदर कंट्री। अगर यूएस कर रहा था तो अगेंस्ट रशिया, अगर रशिया कर रहा था तो अगेंस्ट द यूएस। तो यहाँ पर इनकी रिसर्च स्टार्ट होती है कि हम कैसे जो है, अब रिसर्च का ये सोचे, इनका कहना ये था कि हम ना एक तो टेलीपैथी से मैसेजेस पहुंचाए जाएं, कि जो मान लीजिए उस टाइम पे मॉर्स कोड होता हो या कोई भी एक तरीका होता हो मैसेजेस यहाँ से वहाँ, मान लीजिए बिहाइंड द एनिमी लाइंस अगर मेरा कोई सीक्रेट एजेंट बैठा है किसी भी कंट्री में, मुझे उसके पास मैसेज पहुंचाना हो, तो नेचुरल सी बात है अगर सिर्फ एक थॉट से पहुँच रहा है तब तो वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो उन्होंने उस चीज में इसको रिसर्च करना स्टार्ट किया। और दूसरी चीज इनकी रिसर्च की ये थी कि जो समाधि वाला कॉन्सेप्ट था, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, कि आदमी लेटा हुआ है उसकी फिजिकल बॉडी, लेकिन उसकी आत्मा जो उसकी सोल होती है वो निकल के कहीं पे भी जा सकती है। तो उन्होंने कहा हम इसको यूज करेंगे सीक्रेट्स पाने के लिए। सीक्रेट्स माने मान लीजिए अगर सोवियट्स ने ये टेक्नोलॉजी कह लिया, जो भी है ये पावर्स डेवलप कर लिए, इसको जो पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च कुछ कहा था इन्होंने, पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च। तो उनका कहना ये था कि अगर हमने ये डिस्कवर कर लिया तो हम तो यहाँ से मान लो व्हाइट हाउस में जो भी प्रेसिडेंट की मीटिंग चल रही है हम वहां पे भेज देंगे अपने आदमी को, माने आत्मा बैठी रहेगी एक तरीके से, किसी को दिखाई थोड़े नहीं देगा, और वो आके हमें बता देगा कि वहां पे क्या हुआ, या उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स देखने हो, कुछ भी देखने हो, हम तो उसमें कभी भी जा सकते हैं। और रशियंस ने ना कहीं ना कहीं से कुछ एक ऑन अ साइंटिफिक लेवल ये भी डिस्कवरी जरूर की थी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना वो कुछ बायोप्लाज्मा एनर्जी करके कुछ एमिट करती है। अब इसको ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है, बट आप ये समझ लीजिए जो कि कई बार अगर आपने पोस्टर्स वगैरह में देखा हो या फोटोज में देखा हो, जो हमारे यहाँ के साधु होते हैं वो अक्सर अपने उनके सर के पीछे एक सन सा होता है, ग्लो सा हो रहा होता है, तो वो यहाँ तो सब फोटो वगैरह में लगाया हुआ होता है, आप असली में साधु में मिलेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन सोवियट्स का माने सोवियट्स ने ये मानना था कि ऐसा है, और इसको ये बायोप्लाज्मा एनर्जी कुछ बोल रहे थे, कहते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग ये एमिट करता है, और इन्होंने इसको किसी तरीके से फोटोग्राफ करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो यहां तो ये सब चल रहा था, ये 1960s या 70s की बात है कि जहां पे अमेरिकन्स को भी भनक लगी कि वहां पे कुछ ऐसा चल रहा है, और नेचुरल सी बात है वो बहुत डर गए। आप खुद ही पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं कि आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि आपकी जहां मीटिंग चल रही है मान लीजिए वहीं पे वहां रशियंस आके बैठे हुए हैं, मैसेजेस इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, और उनको धीरे धीरे करके ये भी डर लगने लग गया कि चलो अभी तो सिर्फ आत्मा आ रही है सुन के जा रही है, कल को अगर उन्होंने और भी पावर्स डेवलप कर लिए कि वो आत्मा आके मान लो कई चीजें कर सकती है, उनका एक डर था, सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं वहां के प्रेसिडेंट को मार ना दे, तो इसलिए काफी टाइम तक एक रेड अलर्ट रहता था व्हाइट हाउस में इसी डर को लेकर। नेचुरल सी बात है इन्होंने कभी ये बाहर बात बताई नहीं, लेकिन काफी बड़ा डर था अंदर, काफी ज्यादा रेड अलर्ट पे रहते थे। और दूसरा इनको नेचुरली ये रहता था कि मान लो अगर वॉर हो जाएगा तो इनकी ये आर्मी आएगी और वेपन्स को हमारे डिसआर्म कर देगी, खत्म कर देगी, फिर पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है ना। बेसिकली अमेरिका को तो ये डर लग गया था कि हम तो खत्म हो गए, हम तो हार गए, तो इसीलिए इन लोग ने भी जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा मैसिव रिसर्च करना स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने रियलाइज किया कि हम कम से कम 25 साल पीछे हैं रशियंस से, तो इनको कैचअप करना था। तो कैचअप करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन लोग ने माने न्यूज़पेपर में या कहीं पे ये लोग ने धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट की, कुछ पीआर में आर्टिकल्स वगैरह निकालते थे कि अगर कोई ऐसी चीज जानता है या कुछ भी करके। इनका मेन मोटिव ये था कि अगर मान लो कुछ अमेरिकन्स हैं जो इस सब की चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो चाहते थे वो किसी तरह आके यहाँ पे CIA वालों से मिले। और इन्होंने एक नया डिवीजन भी सेटअप किया, और इनको पता लगा कि यार ऐसे तो बहुत लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और कई तो इतने बड़े इसके एंथुजियास्ट हैं कि उन्होंने छोटे छोटे सेंटर्स भी खोल रखे हैं अपने पैसों से, कि पता लगाने में कि ये होता क्या है। तो क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में आने लगा ना, तो ये बातें इतनी ज्यादा और इनको बढ़ावा मिलने लगा 1970s में। अब आपको टेप कैसेट्स मिलने लग गई थी कि आप ये लीजिए कैसेट $5 की आती है, या कुछ बुक्स आने लगी थी $10 की कि आप इसको पढ़िए और आप इस कैसेट को सुनिए और आप आराम से एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, मार्स पे भी जा सकते हैं, जुपिटर पे भी जा सकते हैं। तो अब कितना हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब CIA ने ये रिसर्च करना स्टार्ट किया तो अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे इनके, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने लगे। तो ये क्या करते थे, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उन्होंने एक आदमी को हिप्नोटाइज करके लेटा दिया, और जो भी इनका तरीका होता था, तो मान लीजिए ये 5th floor पे चल रहा है और ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट पे ना ये कुछ एक रूम को अलग से लॉक करके आते थे और वहाँ पे जो है कुछ मान लीजिए लेटर्स छुपा दिया या कुछ भी कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ थी जो इस आदमी को ये जाके ढूंढना होता था, माने इसके सोल को थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन। इसको हिप्नोटाइज करके इन्होंने पूरा सुला दिया और जब जितने भी टाइम बाद ये उठता था तब ये बताता था कि इस रूम में ये है, ये है और ये रहा तुम्हारा लेटर। या तो माने वो ऑफकोर्स वो फिजिकली लेटर नहीं ला सकते थे लेकिन उसमें जो कंटेंट होता था, जो भी लिखा हुआ था, नंबर्स लिखे रहते थे, वो आके बता देते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये लोग ना कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कभी होता था कभी नहीं होता था, तो इनको पता नहीं था कि इसको करना कैसे, लाइक इसको कंट्रोल कैसे करना है। और सोवियत्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि उनका कितना सक्सेसफुल था या नहीं था, लेकिन इतना जरूर माने कई बार बोला जाता है कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ तक सक्सेसफुल हो गए थे कि 2000 माइल्स दूर भी लोग आपस में टेलीपैथिकली कम्युनिकेट भी कर रहे थे। और दूसरी बात है कि उनको यहाँ और वहाँ की चीज़ें भी पता पड़ रही थी। लेकिन अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन अमेरिकन्स को ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था कि ये कब होएगा कब नहीं होएगा, और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी बात क्या थी कि अब ये नॉर्मल पब्लिक में भी फैलता जा रहा था, तो कई लोगों में मैंने उत्साह था इस चीज़ का। लेकिन होने क्या लगा कुछ टाइम बाद कि जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए जाते थे इवन अंडर कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस, वो मरने लगे, वो वापस ही नहीं आए, गायब हो गए। माने बॉडी यहां पड़ी है लेकिन अब मर गए, वापस ही नहीं आए। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो पर्टिकुलरली ये CIA वालों के साथ होने लगा कि एक आदमी मान लीजिए यहां से इसको हिप्नोटाइज करके एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, वो जैसे ही निकलता था लाखों मील दूर या हजारों मील दूर जहां पे भी इसका अपना घर था, जहां पे भी इसकी वाइफ और इसके बच्चे थे, वहां पे एक के साथ तो दो बेटियां थी, ये जैसे ही बाहर जाता था इसकी दो बेटियां अचानक से उठ के चलाने और चीखने लगती थी, चाहे रात हो या दिन हो। सो रही हूं तो अचानक से जगेंगी और चलाने लगेंगी, चीखने लगेंगी, और अगर दिन में कहीं हूं तो बस रुक के रोने लगेंगी और चीखने भी लगेंगी। और जैसा मैंने बताया तो ये तो एक हो रहा था, दूसरा था कि लोग ही वापस नहीं आ रहे थे। और कई लोग जो आए भी उन्होंने वापस ये बोला कि उनको डर लगने लगा था करने से, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम ना कई बार वापस नहीं आ पा रहे, हमें बड़ी मुश्किल होती है वापस आने में, तो वो काफी डरने से लगे थे। और इस दौरान में कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे सिर्फ CIA ने कि हम कैसे ये योगिक जो शक्तियां हैं उसको हम साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें और साइंटिफिकली हम उसको अपने वॉर में कैसे यूज करें। लेकिन खैर फाइनली ये सब जो लोग मरने लगे, लोग डरने भी लगे, तो फाइनली इनके पास सोवियट्स का भी एक मैसेज आया कि ये वाली जो शक्तियां हैं इसको हम बुरे कामों के लिए या वॉरफेयर के लिए नहीं यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अमेरिकन्स ने शुरू में तो नहीं माना था, माने 2-4 महीने इन्होंने और कंटिन्यू किया, लेकिन इतने सारे इंसिडेंट्स होने लगे, इतने सारे इवेंट्स होने लगे, और फाइनली सोवियट्स का एक और बार मैसेज आया कि टेल द अमेरिकन्स टू स्टॉप, दिस कैनॉट बी यूज्ड अगेंस्ट मैनकाइंड। तब जाके जो है फाइनली अमेरिकन्स ने इसको बंद किया। और वहां से पता लगा था कि रशिया ने भी ये अपने एफर्ट्स बंद कर दिए थे। तो फाइनली जो है ऑल्दो इनको पता था लेकिन साइंटिफिकली ये ज़्यादा कुछ इसमें डेवलप नहीं कर पाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग निकली थी, अब मैं उसको किसी तरीके से प्रोपगेट नहीं करना चाहता हूँ, बट CIA के पेपर्स में है ये कि साइंटिफिकली इन्होंने डिकोड किया था कुछ एनर्जीज को, और कहते हैं कि अगर आपको कहीं फिजिकली पेन हो रहा हो तो अगर आप एक नंबर सोचेंगे अपने दिमाग में 55515 करके कुछ है, और उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहाँ पे पेन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ कि ये मेरी फाइंडिंग नहीं है, ये इन लोग की फाइंडिंग थी एज पर CIA जब इनका इन सारी चीज़ों में रिसर्च चल रहा था। तो खैर ये थी कहानी CIA की और KGB की और कोल्ड वॉर की हमारे यौगिक साधुओं के साथ।